36 वह पर्णकुटी में लौट आई, लेकिन वह पर्णकुटी अब मुझको खाने को दौड़ रही थी। महाराज का और मद्री का दोनों का रूप मुझको पर्णकुटी की घास के पत्ते पत्ते में दिखाई देने लगा। क्षण भर भी यदि मैं वहां रुक जाती तो पागल हो जाती। मैं सहनशील थी, क्षत्रिय कन्या थी, वीर माता थी, फिर भी थी तो मैं एक स्त्री ही। कौन सी स्त्री दुख के इन आघातों को इस भयावह निर्जन अरण्य में रहकर सहन कर लेती। अब मेरे सामने एक ही मार्ग था और वह था फिर से हस्तिनापुर लौट जाना। अपने लिए नहीं, पुत्रों के लिए अपना मन मारकर मैं हस्तिनापुर लौटने को विवश थी। इस समय मैं एक असहाय माता थी। माता अपना मान नहीं जानती, केवल ममता और वात्सल्य जानती है वह। अब वो पुत्र और धात्री के साथ क्या मैं अरण्य में रह सकती थी। जिस श्राप के कारण मैंने हस्तिनापुर छोड़ा था, उसी श्राप के कारण मुझको फिर हस्तिनापुर का मार्ग पकड़ना पड़ रहा था। आते समय महाराज मैं माद्री और धात्री थी, लेकिन लौटते समय महाराज और माद्री के रूप में ये पांच पुत्र थे। प्राणों से भी अधिक प्रिय समझकर यदि इनकी देखभाल की जाएगी तब तो भविष्य में ये कुछ कर सकेंगे। नहीं तो वास्तविकता के अग्नि में आज तक जैसे हमारे जीवन के अंकुर जले थे, वैसे ही इन पांचों बालकों के भी जल जाएंगे। अब रोने से मेरा काम नहीं चल सकता था। रोने से भवितव्य बदला नहीं करता। परिस्थिति और चुनौती को मुंह तोड़ उत्तर देना ही इस समय उचित हो सकता था। स्त्री को अबला कहने वाले समाज को और प्रकृति को, दोनों को मुझे यह दिखा देना था कि प्रतिकूल परिस्थितियों के पंख में भी मैं पांच कमलों को अच्छी तरह पाल पोस सकती हूँ। हम शत्रुसिंह पर्वत को छोड़कर हस्तिनापुर की ओर चल दिए। 20 वर्ष बाद, इन 20 वर्षों में हस्तिनापुर शायद बिल्कुल ही बदल गया होगा। महारानी कुंती के प्रति नगरजनों की भावनाएं धूमिल हो गई होंगी। 37 एक मास बाद हम लोग फिर गंगा किनारे आए। दूर हस्तिनापुर दिखाई दे रहा था। गंगा पर आते मुझको राजमाता के उन कुंडलों की याद आई जिनको मैंने कानों से उतार कर पानी में फेंक दिया था। गंगा के कीचड़ में दब गए होंगे वे, और मैंने उस अश्व नदी में जो दो जीवित कुंडल डाले थे वे अब कहाँ होंगे, कैसे होंगे। इतने वर्षों में उस अबोध बालक का क्या हुआ होगा। एक सारथी के कुल में वह सारथी के रूप में बड़ा हो रहा होगा, घोड़ों की मालिश कर रहा होगा, अपने कुंडलों के संबंध में सबसे प्रश्न करता होगा। मेरे भवितव्य की ऐसी दुर्दशा होगी या यदि किसी मुझको मालूम तभी पड़ जाता तो मैं उसे ही लेकर कहीं चली जाती। परंतु जिस कल्पना से मैंने उसका त्याग किया था वह कल्पना ही क्या साकार हो सकी। एक महारानी के रूप में मैं कितने दिन हस्तिनापुर में बिता सकी थी। उसके त्याग के बदले में न्याय निश्चुर काल ने मुझसे भयंकर प्रतिशोध लिया था, लेकिन अब मुझको अन्यथा विचार नहीं करना था। नारी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अधिक से अधिक रचनात्मक कार्य करना जानती है। अपने पांच पुत्रों की देखभाल करना भी अब मेरा एकमात्र कर्तव्य था। सुनहरे कुंडलों वाला वह लड़का तो उस उद्यान में अशोक वृक्ष से नीचे गिरे हुए चंडोकोक्षिक बच्चे जैसा ही था। उसमें किसी का दोष नहीं था, यदि था भी तो केवल अनिवार्य परिस्थिति का ही। केवल समय उसको फिर अपने भाइयों से मिला सकता था और कोई नहीं, न प्रथा, न प्रथा का पिता, न दुर्वासा। हम सब ने नगर में प्रवेश किया। इस नगर में पहली बार मैं महारानी बनकर आई थी, फिर सन्यासी बनकर बाहर गई थी और अब लगभग 20 वर्षों बाद एक विधवा के रूप में प्रवेश कर गई थी। परंतु फिर भी मेरा मन शांत था। दुख के निरंतर आघातों से अब वह कैसा हो गया था मैं जान गई थी कि शोक दुख की अंतिम औषधि नहीं है। घटित होने वाली प्रत्येक घटना अटल होती है, उसका भी कुछ न कुछ गूढ़ अर्थ होता है, कुछ न कुछ कारण होता है। संसार में कोई घटना निरर्थक नहीं होती। हम लोग राजप्रसाद गए। अब राजमाता मुझे महाराज के संबंध में कुछ पूछेंगी यह सोचकर मैं अपने मन को तैयार करने लगी, लेकिन आमात ने मुझ पर एक और प्रहार किया। उन्होंने कहा, महाराज असमय ही राज त्याग कर अरण्य जा रहे थे। इस समाचार से उनको ऐसा धक्का लगा कि उन्होंने सदा के लिए हस्तिनापुर छोड़ दिया। अब मेरे लिए एक ही अवलंब था और वह थे महाराज भीष्म। उनका मन विशाल था। उन्होंने मुझको देखते ही स्नेह से पूछा, कुंती पांडु और माद्री कहाँ हैं। मैंने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, वे किंदम ऋषि से मेरे भवितव्य का अंत पूछने गए हैं। आगे बढ़कर उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और धीर गंभीर स्वर में बोले, उस अंत को वह क्यों बताएगा, उसके लिए मैं भीष्म ही समर्थ हूँ। कुंती आज से तुम कौरवों की राजमाता हो, भवन में जाओ। अपने पांच पुत्रों के साथ धात्री को लेकर भवन की सीढ़ियों पर पैर रखते हुए मैंने पितामह की ओर देखा। उत्तरी के छोर से भी अपनी आर्द्र आंखों की पलके पोछ रहे थे। 38 20 वर्षों में हस्तिनापुर एकदम बदल गया था। राज्य के सभी सूत्र महाराज धृतराष्ट्र के हाथों में चले गए थे। हम लोगों के अरण्य में चले जाने के बाद शीघ्र ही गांधार देश की रूप संपन्न गांधारी देवी से उनका विवाह हो गया था। देवर विदुर का भी विवाह हो गया था, लेकिन वे सलाह देने के अतिरिक्त अन्य किसी राजकारण में ध्यान नहीं देते थे। राजप्रसाद में कौरवों के सभी वृद्ध पुरुष अनंत यात्रा पर बहुत पहले ही प्रस्थान कर चुके थे। अकेले महाराज भीष्म हिमालय की तरह दृढ़ खड़े होकर गंभीरतापूर्वक चारों ओर देखभाल कर रहे थे। महारानी गांधारी देवी महर्षि व्यास के वरदान से 100 पुत्र और 1 पुत्री हुई थी। लड़की का नाम दुशला था। पुत्रों में सबसे बड़ा दुर्योधन था। कौरव वंश वटवृक्ष की तरह फैल गया था। द्रोण नामक कुशल गुरु सभी राजकुमार को युद्ध विद्या सिखाने के लिए नगर में आए हुए थे। मैं राजमाता के रूप में भवन में रहने लगी। महाराज के पुत्र होने के कारण मेरे पुत्रों को सभी लोग बड़े प्रेम से रखने लगे। भूतकाल में महाराज के दिग्विजय से तथा पितामह भीष्म के भय से सभी लोग राजमाता के रूप में मेरा सम्मान करने लगे। मेरे पुत्र युवराज की युद्धशाला में युद्ध विद्या की शिक्षा प्राप्त करने लगे। जन्म से ही कुशाग्र बुद्धि और विनम्र होने के कारण वे सबको अच्छे लगने लगे। अर्जुन तो गुरु द्रोण का सर्वाधिक प्रिय शिष्य हो गया था। वे सदैव कहा करते, अर्जुन जैसा धनुर्धर संपूर्ण आर्यावर्त में नहीं होगा। पुत्र भी आपस में स्नेहपूर्वक व्यवहार करने लगे। वे सौतेले भाई थे, यह बात कोई कहने पर विश्वास न करता। परिस्थिति के क्रूर थपेड़े खाता हुआ मेरा मन यह सब देखकर कुछ निश्चिंत हुआ। मेरे लौट आने से बालकों का कल्याण ही हुआ है, यह देखकर मैं मन ही मन सुखी हुई। अब राजमाता बनकर मैं सुख संतोष से रह रही थी। 20 वर्ष के वनवास की भट्टी में तप कर निकला हुआ था यह राजमाता का पद। मुझको उस पर अभिमान था और क्यों न होता। परिस्थिति की सभी चुनौतियों को एक स्त्री होकर भी मुझ अकेली ने कितने अनपेक्षित धैर्य से स्वीकार किया था और शांत होकर राजमाता के रूप में मेरा जीवन अब संतोष की सांस लेने लगा। 5 पुत्रों की ओर आशा से देखने लगा। लेकिन कभी कभी बीच में भी मुझको भोजपुर में जन्मे अपने प्रथम पुत्र की याद आ जाती थी और तब मन व्याकुल हो उठता था। 39 हस्तिनापुर में आने के उपरांत 2 वर्ष बाद यह घटना है। मैं एक नगर के अंदर विष्णु के मंदिर में देव दर्शन के लिए गई। पितामह भीष्म ने मेरे लिए पर्दों वाला एक विशेष रथ तैयार करवा दिया था। उस दिन मैं उसी में बैठकर नगर में गई। उस रथ में 6 घोड़े जोतने की व्यवस्था थी, परंतु मैं साथियों को सदैव 5 घोड़े ही जोतने को कहती। वह कहता था, राजमाता, एक घोड़ा न जोतने से रथ का सौंदर्य नहीं दिखाई देता, इसके अलावा रथ का संतुलन भी ठीक नहीं रहता। मैं उससे कहती, यूं ही रहने दे, वरिक स्थान मुझको सदैव किसी की याद दिलाता रहेगा। तो 5 घोड़ों को ही जोता कर, जबको 5 का अंक अच्छा लगता है, 6 का नहीं। उस दिन हम देव दर्शन करके लौट रहे थे। रथ राजप्रसाद के समीप आ चुका था, थोड़ा ही अंतर रह गया था, लेकिन एक जोर का आघात लगा और रथ बीच में ही रुक गया। मैंने सारथी से कहा, क्या हुआ, रथ क्यों रोक दिया। वह बोला, एक अनजान बालक रास्ते में आ गया है राजमाता। रथ के नीचे कुचल जाने वाले एक बिल्ली के बच्चे को बचाने के लिए उसने अपने प्राण संकट में झोंक दिए हैं। मैंने घोड़े रोक लिए हैं, इसलिए वह बच गया। मुझको उस लड़के पर आश्चर्य हुआ। अपने प्राण संकट में डालकर वह बिल्ली के एक बच्चे को बचा रहा था और मैं तो माता होकर भी अपने पुत्र को स्वयं ही दूर धकेल चुकी थी। कितना बड़ा हो गया होगा वह। इस समय वह यदि मेरे पास आ जाता तो मैं उसको अपनी छाती से लगा लेती, परंतु सामाजिक रूढ़ियों का पर्दा मुझको उसके नगर में जाने की अनुमति नहीं दे सकता था। क्या करता होगा वह, कितना बड़ा हो गया होगा, कहाँ होगा, किसको अपनी माता मानता होगा, आदि आदि अनेक प्रश्न मेरे विचार में आए। भवन में जाकर तल पर चुपचाप लेटने के विचार से मैं सारथी से बोली, पल भर भी मत रुको, जल्दी रथ बढ़ाओ। उसने हाथ के प्रतूत घोड़ों पर फटकारा। ध्वनि को सुनते ही मेरे मन में विचार आया कि मेरा पुत्र भी कहीं ऐसे ही घोड़े की पीठ पर कशाघात तो नहीं कर रहा होगा। इस विचार से मन विद्ध हो गया। क्या नाम रखा गया होगा उसका, कितना बड़ा दिखाई देता होगा वह, उसके कुंडल कैसे दिखाई देते होंगे। विचार करते करते ही मैं राजप्रसाद पहुंच गई। 40 काल की नदी दिन और रात के मोड़ लेते हुए बह रही थी। युधिष्ठिर भी अर्जुन और नकुल सहदेव दिन प्रतिदिन अधिकाधिक लोकप्रिय होते जा रहे थे। नगर के सभी लोग आदर के साथ उनका उल्लेख करते थे। मेरा मन फिर सुख के झूले पर झूलने लगा। महाराज के नाम पर लोग मेरे सब पुत्रों को पांडव कहने लगे। सभी पुत्र बिना मुझसे पूछे कभी कोई काम नहीं करते थे। मैंने जो कष्ट सहन किए थे उसका प्रतिफल मुझको मिला। कभी कभी उन 5 पुत्रों को देखकर मेरी आंखों के में आनंद के आंसू भर आते। मेरा मन अब शांत था, लेकिन जैसे हाथी के पैर से किसी तालाब की शांत सतह मथित हो जाती है, वैसे ही कभी कभी एकाध घटना से मेरे मन का शांत धरातल विक्षुब्ध हो जाया करता। तब अनेक प्रकार की स्मृतियों की याद इधर उधर फिरने लगती। शैशवावस्था से लेकर अब तक का मेरे जीवन का चित्र मेरी आंखों के सामने खड़ा हो जाता और तब अपने धैर्य पर मुझको स्वयं ही आश्चर्य होता। कहाँ से चलकर मैं यहाँ पहुँची थी। इस बीच एक भी डग मैंने कभी अपनी इच्छा से उठाया था क्या। सत्य है कि मनुष्य समाज में घूमता फिरता है, परंतु भीतर उसका एक मन एकाकी ही होता है। प्रत्येक को अपना दुख स्वयं सहन करना पड़ता है। जो रक्त पेशियां मिली होती हैं उन्हीं के बल पर जीवन भर दौड़ता होता है। यह बात मैं अच्छी तरह जान गई थी। बाघ जैसे हरणों का पीछा करता है, वैसे ही जब जब स्मृतियां मेरा पीछा करती तब तब मैं अपना मन किसी न किसी काम में उलझा देती। भूतकाल का चित्र अदृश्य हो गया। कभी कभी केवल दूसरों के लिए ही जीना पड़ता है और वह भी अपने आंसू छिपाकर जीना पड़ता है। मैं इसी तरह जी रही थी। पांडवों के रूप में मेरे पुत्रों की कीर्ति आसपास के सभी राज्यों में फैलने लगी। महाराज धृतराष्ट्र मुझसे बातें करते समय बार बार आदर से उनका उल्लेख करते थे। अब मैं केवल राजमाता नहीं थी बल्कि 5 बलवान वीरों की माता थी। कभी अरण्य में मैंने 20 वर्ष बिताए हैं या बात भी मैं भूल गई। आह, सुख के दिन भी कितनी जल्दी बीतते हैं। विद्याशाला में पुत्रों के शिक्षण का कार्य समय कितनी शीघ्रता से बीतता जा रहा था। कल परसों तक मुझसे बचकाने प्रश्न करने वाले युधिष्ठिर और भीम अब कितने बड़े और मितभाषी हो गए थे। बढ़ती हुई अवस्था के साथ उनकी बुद्धि भी बढ़ती जा रही थी। शुक्ल पक्ष के चंद्र की तरह भीमार्जुन बड़े हो रहे थे। वे दिन रात युद्धशाला में परिश्रम करने लगे। शूल, तोमर, शतग्नि, भुशुंडी, चक्र, धनुष आदि भिन्न भिन्न प्रकार के शस्त्रों में वे दक्ष होने लगे। घंटों तक वे शास्त्रार्थों पर चर्चा करने लगे। व्यायामशाला में कसे हुए उनके शरीर सुदृढ़ और हृष्ट पुष्ट दिखाई देने लगे। अपने विनीत स्वभाव से वे सबका मन मोहने लगे। अर्जुन धनुर्विद्या में प्रवीण हो गया। युधिष्ठिर धर्मशास्त्र में पारंगत हो गया। भीम तो किसी अशोक वृक्ष की तरह गोल मटोल दिखाई देने लगा। उसकी गौर भुजाओं के पुष्ट स्नायु गदा के दंड की तरह ऐठे हुए दिखाई देने लगे। नकुल सहदेव खड्ग में निपुण हो गए थे। मेरी चरण धूल लेकर आशीर्वाद प्राप्त किए बिना वे कोई कार्य नहीं करते थे। भीम का स्वभाव कुछ क्रोधी था। वह सदैव हाथ में गदा लिए फिरता रहता। उसके विशाल का शरीर तथा हाथ की गदा को देखकर कोई उसे छू तक नहीं करता था। उसको बहुत शीघ्र क्रोध आ जाता। भुजाओं में शक्ति होने का वह किसी की निंदा या शाब्दिक अपमान नहीं करता था। वह तो तुरंत ही संबंधित व्यक्ति की ठुकाई कर देता। मैं उसको सदैव इन सब बातों से रोकने का प्रयत्न करती। मेरे सामने वह एक शब्द भी नहीं बोलता। उसको समझाने की शक्ति और किसी में नहीं थी, परंतु उसके क्रोधी स्वभाव को बदलने के लिए मेरे मन में भी संभव नहीं था। मेरी अनुपस्थिति में वह सदैव किसी न किसी से लड़ाई मोल लेता। उसको गदा से अत्यधिक रुचि थी। यह रुचि दुर्योधन में भी थी। उनको गदा सिखाने के लिए मथुरा से मेरा भतीजा बलराम आया था। मेरे आने के बाद मथुरा में पिताजी को एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ था। उसका नाम वसुदेव था। बलराम वसुदेव का पुत्र था। वसुदेव का एक और पुत्र था, उसका नाम कृष्ण था। वह मथुरा में ही था। बलराम की गदा कक्षा में कभी कभी दुर्योधन और भीम में ठन जाया करती। उसका वृत्तांत मेरे कानों तक आता रहता। मैं भीम को सदैव समझाती रहती, परंतु दिन दिन बढ़ती हुई उसकी शारीरिक शक्ति उसको कभी चुप बैठने नहीं देती थी। दुर्योधन तो बड़ा हठी और घमंडी था। उसकी कंजी आंखों में क्या छिपा है यह बताना कठिन था। भीम के क्रोध प्रतिबंध लगाने के लिए मैंने एक रोचक प्रतिज्ञा की। उस समय वह प्रसन्न मुद्रा में था। उस सब में युधिष्ठिर अतिशय शांत और विचारशील था। उसके विचार का अंकुश सदैव भीम पर रहे सोचकर मैंने कहा था, भीम तुझको कभी कितना भी क्रोध आए तो सदैव युधिष्ठिर के दाएं पैर के अंगूठे की ओर देखना। वह अपना अंगूठा ऊपर करे तभी तो बोलना, अन्यथा चुप रहना, मुंह भी मत खोलना, यह मेरी आज्ञा है। वह भी उस प्रतिज्ञा का आज तक पालन करता आ रहा है। बड़े होने पर भी युधिष्ठिर के सामने भीम सिद्धांत टूटे हुए सर्प की तरह निस्तेज हो जाता था। एक बार बड़ी विचित्र बात मैंने सुनी। उस दिन दुर्योधन और उसका भाई मेरे सभी पुत्रों के साथ नगर के बाहर वन विहार करने गए थे। दोपहर तक वे सभी वन में घूमते रहे। जाते समय वे अपने साथ मधुर पकवान ले गए थे। दोपहर को सभी एक सरोवर के किनारे अल्पाहार करने बैठे। उस दिन दुर्योधन भीम को अपने हाथों से मोदक खिलाने लगा। खाने की कोई भी वस्तु भीम अधिक विचार किए बिना ही खा लेता था, यह उसका स्वभाव था। इसलिए दुर्योधन खिलाता गया और भीम खाता गया। आहार समाप्त होने पर सब पानी पीकर विश्राम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे लेट गए, परंतु भीम पानी पीने के लिए भी नहीं उठ सका। वह वहीं पर गिर पड़ा। सबने समझा कि वह निद्रालु है, इसलिए उसको नींद आ गई थी, लेकिन वह सोया नहीं था। वह मूर्छित हो गया था। दुर्योधन ने मोदकों में उसको मूर्छित कर देने वाली औषध खिला दी थी। सबको पेड़ के नीचे लेटे हुए देखकर दुर्योधन धीरे से उठकर भीम के पास आया। सरोवर के किनारे पड़ी वनलताओं से उसने भीम के हाथ पैर बांधकर उसको मूर्छित अवस्था में उठाकर सरोवर में फेंक दिया। पानी का स्पर्श होते ही मेरा भीम धीरे धीरे जागृत हुआ, चैतन्य होकर बाहर आया। हो सकता है कि ईश्वर की कृपा से किसी जल देवता ने उसकी रक्षा की हो। मुझको यह वृद्धांत एक सेवक ने बताया था, लेकिन इस पर मुझको विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मुझको पूरा विश्वास था कि मेरे शेष 4 पुत्र उसको अकेला छोड़कर तिल भर भी इधर उधर नहीं गए होंगे। इसके अतिरिक्त भीम प्रतिदिन जो आहार करता था उससे मैं यह बात जान गई थी कि उसकी आंत में सब प्रकार के विष को पचा जाने में पूर्ण सामर्थ्य थी।